Hey there, you're listening to The Quint.
सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखना किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि कोर्ट को लेकर किया गया ट्वीट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में भी आ सकता है। यानी अगर उस सोशल मीडिया पोस्ट से कोर्ट की अवमानना होती है तो पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ तुरंत केस दर्ज हो सकता है। लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में आखिर ये कैसे तय किया जाए कि कौन सा पोस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा और कौन सा नहीं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चर्चा यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला आजकल खूब चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए जाने माने लॉयर और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज हो गया है। उन पर 11 साल पहले एक और कंटेम्प्ट केस दर्ज हुआ था, वो भी दोबारा सामने लाया गया है। दोनों अलग केसेस हैं जिनकी सुनवाई 4 और 5 अगस्त को तय हुई। लेकिन सवाल यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना क्या होती है और किन हालात में ये माना जाता है कि यहाँ कंटेम्प्ट हुआ है। साथ ही जानेंगे कि प्रशांत भूषण की ट्वीट में ऐसा क्या था जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया गया। आज बिग स्टोरी में इसी मामले को लेकर बात करेंगे। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी हिंदी, मैं हूं फबेहा सैयद। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को खुद ही संज्ञान लेते हुए वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सीजीआई के बारे में अपमानजनक ट्वीट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मुकदमा दायर करने की कार्यवाही शुरू की। साथ ही ट्विटर इंडिया को भी नोटिस भेजा गया। जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी के बेंच ने इस मामले की एक ब्रीफ हियरिंग 22 जुलाई को की, जिसमें मामले की सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। ये इसलिए किया ताकि भूषण अपना जवाब तैयार कर सकें। लेकिन 2 अगस्त ही को भूषण ने कोर्ट में एक डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट किया और कहा कि ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग देश के इंस्टीट्यूशंस में जो हो रहा है उसके बारे में खुल के बात कर सकें। यानी अपने ट्वीट्स की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात छेड़ दी कि जुडिशरी या दूसरी किसी बॉडी के रिफॉर्म के लिए टिप्पणी करना या आलोचना करना कंटेम्प्ट कैसे हो सकता है। इसी बड़े और कानूनी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे क्विंट के लीगल एडिटर वकाशा सचदेव से कि आखिर संविधान इसके बारे में क्या कहता है।
यहाँ पे कंटेम्प्ट 2 टाइप के चीज के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट।
लेकिन पहले जान लेते हैं कि प्रशांत भूषण के वो कौन से ट्वीट्स हैं जिनकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना यानी कंटेम्प्ट का मामला प्रशांत भूषण के हैंडल से किए गए इन 2 ट्वीट से संबंधित है। 27 जून को एक ट्वीट में उन्होंने जो लिखा वो आपको हम पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने लिखा था, जब भविष्य के इतिहासकार पिछले 6 वर्षों की तरफ पलटकर देखेंगे कि इमरजेंसी नहीं होने के बावजूद भी भारत के लोकतंत्र को किस तरह बर्बाद किया गया, तो इस बर्बादी के लिए वो विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ही को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिसमें खास तौर पर पिछले 4 सीजेआई की भूमिका पर सवाल उठेंगे। दूसरा ट्वीट प्रशांत भूषण के हैंडल से 29 जून को किया गया, जिसमें उन्होंने हार्ले डेविडसन सुपरबाइक पर बैठे सीजीआई बोबडे की एक तस्वीर साझा की, जिसमें लिखा था कि उस समय जब सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार देने से इनकार कर रहा था क्योंकि वो लॉकडाउन मोड में था, तब सीजेआई एक बीजेपी नेता के बेटे की बाइक पर बैठे हुए थे। इन दोनों ही ट्वीट्स को लेकर कंटेम्प्ट का मुकदमा दर्ज है, लेकिन खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इसकी कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई। इसके संवैधानिक होने पर ऐसे ही मामलों के बाद सवाल उठाए जाते हैं। अब वरिष्ठ पत्रकार एन राम और अरुण शौरी ने प्रशांत भूषण के साथ मिलकर कोर्ट की अवमानना कानून 1971 के सेक्शन 2C1 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इस कानून के खिलाफ एक याचिका दायर की है। उसमें क्या लिखा है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है और किस तरह का अपराध माना जाता है। इसके बारे में बात करने के लिए मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं क्विंट के लीगल एडिटर वकाशा सचदेव।
यहाँ पे कंटेम्प्ट 2 टाइप के चीज के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट। अब सिविल कंटेम्प्ट में उसमें यही होता है कि अगर आप कोर्ट के किसी जजमेंट या ऑर्डर या कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है कोर्ट से, अगर आप उसको मानते नहीं हो तो फिर अगर आप उसको कंप्लाई करते हो तो फिर आप सिविल कंटेम्प्ट में। पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसमें ये आ जाता है कि क्या आप कोर्ट की जो इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ कुछ कर रहे हो। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है एंड में ये होता है कि अगर आप किसी तरीके की चीज कर रहे हो जिसके वजह से आप कोर्ट के अपने काम करने में रोक रहे हो, क्योंकि जुडिशरी जैसे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन उनका एक जो रेपुटेशन है, उनका जो स्टैंडिंग है, जो लोग सोचते हैं उसके बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें दो चीज़ें होते हैं मेन टाइप्स के जो और भी जगह में एक्सेप्ट होता है. एक तो ये है कि अगर आप किसी तरीके से जो आप कर रहे हो वो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है उसको रोकने में से फ़र्क पड़ता है, या जो आप कर रहे हो एक कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको अफेक्ट कर रहे हो. पर इंडिया में हमारे जो कंटेम्प्ट के डेफिनेशंस है उसमें एक और डेफिनेशन भी है, और ये एक थोड़ा ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कि अगर आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हो या कोर्ट की जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर है, उसको कम कर रहे हो, तो ये एक्चुअली सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है. और यही आ जाता है जैसे प्रशांत भूषण के केस में कि अगर किसी भी तरीके से कोर्ट को लगता है कि आप उनके अथॉरिटी को, उनको, उनके जजेस को, इंस्टीट्यूशन को, उनकी अथॉरिटी को कम कर रहे हो, तो फिर उसमें वो कंटेम्प्ट हो जाता है. अगर आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जा रहे हो तो फिर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के बारे में देखना पड़ता है. पर सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कंटेम्प्ट पावर वो और भी ब्रॉड है, वो इससे भी ज्यादा चीजें को कंटेम्प्ट मान सकते हैं. नॉर्मली वो इस इन तीन चीजों के बेसिस पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तरह देखते हैं. टेक्निकली उनका जो डेफिनेशन है इससे ब्रॉड पावर है, वो कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं, वो अपने रूल्स में कुछ चीजें लिखे हैं उसके बारे में. पर मेनली पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें काफी अनलिमिटेड पावर होता है.
प्रशांत भूषण के केस में दो चीजें हुई हैं, एक तो उनके हाल ही में किए गए दो ट्वीट्स और दूसरा वो केस जो 11 साल पहले सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे की शिकायत पर दर्ज किया गया था. वो केस प्रशांत भूषण का तहलका में दिए गए एक इंटरव्यू के बारे में था जिसमें उन्होंने ज्यूडिशरी पर करप्ट होने का आरोप लगाया था. अब भूषण के हाल ही में किए गए ट्वीट्स और एक इंटरव्यू में दिए उनके बयान ये कैसे कंटेम्प्ट के दायरे में आ गए हैं ये भी समझते हैं वकाशा से.
एक चीज याद रखना चाहिए कि दो केसेस है, ये सेपरेट केसेस है, एक केस में मिले हुए जुड़े हुए नहीं है. पहला केस ये है जो 2009 से कंटेम्प्ट केस चल रहा था, बहुत हल्का के इंटरव्यू में. अब उसमें उन्होंने बोला था कि जो पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनमें से 8 करप्ट थे. अब ये 2009 में था, वो अभी नहीं, वो 2009 में था, उन्होंने ऐसे बोला था. और भी कमेंट्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये सब कुछ उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोले थे. अब उसके बेसिस पे हरीश सालवे ने जाके वो केस सुप्रीम कोर्ट को बताया था और कोर्ट ने फिर केस रजिस्टर कर दिया था. अब उसमें इनफैक्ट आज एक हियरिंग हुआ था जिसमें कोर्ट ने उनसे अपॉलोजी के लिए पूछा था. उन्होंने बोला कि मैं अपॉलोजी नहीं दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं और मैं ये बोल सकता हूं कि अगर फैमिलीज को, जजेस के या और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर मैं उसके लिए अपोलोजाइज कर सकता हूं. और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि करप्शन जब भ्रष्टाचार के बारे में बात करता है वो यही नहीं कि लोग पैसे लेके रहते हैं, वो और भी चीजों के बारे में हो सकता है. पर उन्होंने कहा कि वो अपोलोजी नहीं करेंगे. उसके बाद फिर अब जजेस ने उसको रिजर्व किया क्योंकि वो अभी वो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं उनका और तहलका का कि क्या यहाँ पे कंटेम्प्ट है या नहीं. उस केस में भी उन्होंने शांति भूषण जो उनके पिता है, वो जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने इनफैक्ट एक एफिडेविट उनके सपोर्ट में फाइल किया था जिसमें उन्होंने भी बोला था कि मुझे भी लगता है, मेरे भी ओपिनियन में ये जो पिछले 16 सीजीआई में से 8 करप्ट थे वो. अब उसके साथ में वो केस उसमें लग रहा है कि वहां पे भी बढ़ेगा कि वहां पे भी आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे कि क्या यहाँ पे कोई सिटीजन एक ओपिनियन ले सकते हैं. यहाँ पे जो इस वाले केस में भूषण ने अपने ट्वीट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है जो नया केस है, क्योंकि नया केस में पहला ये था कि वो एक हार्ली डेविडसन बाइक पे सीजीआई चढ़े थे जब वो नागपुर गए थे एक छोटे ब्रेक के लिए. और भूषण ने एक्चुअली इसके बारे में बोला कि मैंने इसके बारे में ट्वीट किया था क्योंकि सीजीआई जो है उन्होंने अभी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड में लिया था और उसकी वजह से केसेस हियर नहीं किए जा रहे थे और ये सब क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है. कोविड के सिचुएशन के बजाय उन्होंने जाके एक इतने बड़े क्राउड में जाके वो बाइक पे चढ़ गए थे बिना मास्क पहने ये सब. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना था कि ये थोड़ा इनकॉन्ग्रुइटी है जैसे उन्होंने कि आप एक चीज बोल रहे हो पर और भी चीजें कर रहे हो. और जो और भी फैक्ट्स थे उस ट्वीट में कि ये बीजेपी के बेटे के का बाइक है, ये राजभवन में हुआ था, ये सब उन्होंने कहा था, ये सब तो इनफैक्ट सोशल मीडिया और मीडिया में ऑलरेडी रिपोर्ट हो गए थे, वो ऑलरेडी फैक्चुअली एक्सेप्टेड थे, उन्होंने कुछ ऐसे गलत फहमी तो नहीं किया था इसके बारे में. अब जो दूसरा ट्वीट है वो एक्चुअली इसमें थोड़ा ज्यादा डेडली है क्योंकि उसमें उन्होंने बोला था कि देश में डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है पिछले 6 साल में और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल है. उन्होंने बोला था कि सीजीआई जो पिछले 4 सीजीआई थे उन्होंने इसमें एक और भी पर्टिकुलरली रोल किया है. अब यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये इतने 3 चीजें, एक कि देश में डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, दूसरी कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक रोल है, तीसरा कि सीजीआई ने इसमें रोल प्ले किया था. उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि पहले जो इशू है ओपिनियन का कि देश में ऐसे संकट हो रहा है वो इसके बारे में बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बुक को रेफरेंस किया, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, एक बुक है उसमें जिसमें दो हार्वर्ड के प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया कि जो डेमोक्रेसीज है जो अपने एक्चुअली जो संविधान के बेसिस पे चलते हैं वो कैसे होता है कि वो टूट के फासिस्टवादी स्टेट बन जाते हैं. तो इसको डिस्कस किया था उसमें और उसके बेसिस पर उन्होंने बोला था कि देश में जो चल रहा है पिछले 6 साल से वो इंडिया की डेमोक्रेसी को तोड़ रहा है। दूसरे पॉइंट फिर आ जाता है कि जजेस और सीजीआई के बारे में, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए मेरा एक पूरा एक रीजन ओपिनियन है, आपको अच्छा नहीं लगेगा ये तो पता है मुझे, पर मेरा रीजन जो ओपिनियन है वो एक रीजन बेसिस पे मैंने बना के रखा है, उसके लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो इतने सारे पुराने फॉर्मर जजेस है, रिटायर्ड जजेस है, उन्होंने भी इस टाइप की चीजें बोले। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा कि ये कोर्ट में जो चल रहे थे, कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स चले थे या कैसे जजमेंट आए थे, वो कानून के खिलाफ थे, वो प्रोसीजर के खिलाफ थे, वो और भी उन्होंने ये अपने ड्यूटी नहीं निभाया था जो होता है कोर्ट का, कि वो संविधान के बेसिस पे रूल ऑफ लॉ को बचाए, वो लोगों को गवर्नमेंट के एक्सेस से बचाए, वो आजादी को बचाए, और इसके बेसिस पे उन्होंने अपना ये ओपिनियन बोला।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना कानून 1971 के सेक्शन 2C का पहला पार्ट, उसे खत्म करने के लिए मांग करते हुए जो वरिष्ठ पत्रकार एनराम और अरुण शौरी ने प्रशांत भूषण के साथ मिलकर याचिका दायर की है, उसमें कहा गया है कि अवमानना कानून का ये प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मिले बोलने के आजादी के अधिकार का उल्लंघन करता है, साथ ही ये असंवैधानिक और लाइलाज रूप से अस्पष्ट और जाहिर तौर पर मनमाना है, जिसकी वजह से यह आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की आलोचना को पूर्ण और व्यापक ढंग से आपराधिक बनाने से ये सब सेक्शन सार्वजनिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों पर बोलने पर अग्रिम अंकुश लगा देता है। इन तीनों याचिकाकर्ताओं पर कोर्ट की अवमानना का केस हो चुका है। कोल्लम लिकर ट्रेजेडी केस की कोर्ट प्रोसीडिंग्स छापने के मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम पर केरल हाई कोर्ट में अवमानना का केस चला था, वहीं अरुण शौरी पर जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन पर एक आर्टिकल की वजह से अवमानना का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आर्टिकल से कोर्ट की अवमानना नहीं होती। प्रशांत भूषण की बात करें तो उन्होंने लोकतंत्र के बर्बाद होने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और पिछले सीजेआई पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या ऑफिस होल्डर के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेम्प्ट कानून में बताए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का उल्लंघन करता है, ये भी जानते हैं वकाशा से।
इसेंशली यहाँ पे क्या हो रहा है कि भूषण कह रहे हैं कि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा आर्टिकल 19(1)(a) में है कि हर सिटीजन कुछ भी बोल सकते, जो बोलना चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर आर्टिकल 19(2) में लिखा है कि ये इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, डेफेमेशन के लिए अगर कानून के खिलाफ हो, पब्लिक ऑर्डर को इंसाइट कर रहे हो, और कंटेम्प्ट इनमें से एक भी एक एक्सेप्शन है, पर ये एक्सेप्शन को अगर अप्लीकेबल होना चाहिए तो फिर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वो ऐसी कुछ भी चीज नहीं हो सकता है। अब प्रशांत भूषण कहते हैं कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि कोई भी सिटीजन देश का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, चाहे जितना भी एविडेंस हो कि भ्रष्टाचार है, उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो ये बिल्कुल गलत चीज है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे टाइप के रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि कोई भी सिचुएशन में कोई इसके बारे में बोल नहीं सकता, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने बोला कि इनफैक्ट सिटीजन का भी एक ड्यूटी होता है कि उनको अपने देश को बचाना पड़ता है, संविधान को बचाना पड़ता है, तो अगर वो देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कोर्ट में, उनके जो डिसीजन है वो गलत है, गलत तरीके से भ्रष्टाचार है, कुछ भी है, अगर सिटीजन देख रहे हैं कि ये है और फिर वो कुछ बोलते नहीं है, तो इनफैक्ट सिटीजन अपने ड्यूटी नहीं निभा रहे, और क्योंकि लॉयर्स कोर्ट्स के अफसर होते हैं, तो अगर वो इस सिचुएशन में कुछ ना बोले तो वो और भी प्रॉब्लमेटिक है, चाहे जितना भी गलत लगे कि वो कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो और भी गलत होगा अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल जज आर्ग्यूमेंट तो बन जाता है, पर क्या कानून के तौर पर ये बोल सकते हैं? एक्चुअली हाँ, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स देखेंगे वहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। एक जो कॉमन चीज़ होता है ये पुराने जजमेंट्स में वो ये है कि वो कहते हैं कि सिचुएशन जो भी हो, कोर्ट्स को कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन कॉशियसली सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, वो जो पावर है उसको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए किसी को कोर्ट को क्रिटिसाइज करने से इसे रोकने के लिए, वो गलत हुआ, क्योंकि जो पॉइंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो ये है कि इंसाफ को बढ़ाए, क्योंकि अगर कोर्ट्स अपना काम नहीं कर सकते क्योंकि लोग उनके जो अथॉरिटी है उसको लोअर कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, उससे इंसाफ को बांटने में प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए कंटेम्प्ट को यूज किया जाना चाहिए, पर अगर वो बस ऐसे ही क्रिटिसिज्म के बारे में हो रहा है फिर वो गलत तरीके से। अगर हम देखें कि जैसे यूके में जहां से हमें कंटेम्प्ट का ज्यूरिसडिक्शन आया था, उन्होंने इसको इनफैक्ट अबॉलिश किया है, उसको उन्होंने संविधान के खिलाफ माना किया है, और उन्होंने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, फेयर ट्रायल के भी खिलाफ है, क्योंकि ये जजेस को पावर देते हैं कि अगर कोई उनके बारे में कुछ गलत बोले वो उसको रोक सकते हैं, और यही नहीं, उसको रोकने के लिए वही जजेस उस पर जाके पनिशमेंट कर सकते हैं, जो फ्री स्पीच का जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही है उसके खिलाफ है। और इसलिए भूषण ने फिर जाके पूरा बहुत डिटेल में उन्होंने हर चीज़ जो पिछले 4 सीजीआई के टेन्योर में जो गलत चीज़ें जो उनको गलत लगते हैं और जो कहते हैं कि वो कानून के खिलाफ थे, प्रोसीजर के खिलाफ थे, उसका एक पूरा लिस्ट बना के रखा है।
प्रशांत भूषण ने एक बहुत ही डिटेल्ड एफिडेविट में न्यूज रिपोर्ट्स, कोर्ट ऑर्डर्स, ओपिनियन आर्टिकल्स और कई ऑफिशियल दस्तावेज जमा करके सुप्रीम कोर्ट और उन चार चीफ जस्टिसेस के खिलाफ अपने ट्वीट्स को डिफेंड करते हुए अपना केस रखा है, जिनमें सीजेआई खेहड़ का नाम था जो 4 जनवरी 2017 से लेकर 27 अगस्त 2017 तक सीजेआई रही थे। इनका नाम देने के पीछे भूषण की दलील ये थी कि सीजेआई खेहड़ ने सहारा बिरला डायरीज की जांच के अनुरोध को खारिज कर दिया क्योंकि इस जांच में प्रधानमंत्री मोदी को कुछ पेमेंट देने की रिपोर्ट्स का जिक्र है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर नाम आया सीजेआई दीपक मिश्रा का जो 28 अगस्त 2017 से 1 अक्टूबर 2018 तक सीजेआई रहे थे। भूषण ने इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज ब्राइबरी केस को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। प्रशांत भूषण ने सीजेआई गोगोई का भी अपने एफिडेविट में नाम लिया है कि कैसे उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर से हेबियस कॉर्पस पिटिशन दायर हुई थी उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी। आखिर में सीजेआई बोबड़े का भी नाम कई केसेस में लिया गया है जिसमें जामिया मामला शामिल था। प्रशांत भूषण का कहना था कि सीजेआई ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ पुलिस हिंसा की रिपोर्टों के बारे में याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इनके अलावा प्रशांत भूषण ने अपने पक्ष में और भी कई दलीलें रखी जिनमें जुडिशरी के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर अब ये मामला दोनों तरफ से कोर्ट में है। इन सभी दलीलों के बाद प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात है। वही अवमानना कानून के खिलाफ दायर याचिका पर भी सभी की नजरें हैं क्योंकि अगर इस पर सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं उस लाइन का पता चल जाएगा जिसे पार करते ही आप कोर्ट के अवमानना के दोषी पाए जाते हैं। इस पॉडकास्ट के एडिटर संतोष कुमार हैं और इसे प्रोड्यूस किया है फबेहा सैयद ने। अगर आपको बिग स्टोरी सुनना पसंद है तो क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए और हमारे पॉडकास्ट सेक्शन का मजा लीजिए।